आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 24 दिसंबर है आज, दिन है गुरुवार और शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। किसानों को आज एक बार फिर सरकार ने बातचीत के लिए बुलावा भेजा है। हालांकि किसान कह चुके हैं कि नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। उधर किसानों को फिक्र ये भी है कि पहले कानून में MSP की बात तो है, पर फसल के दामों को नियंत्रित करने का कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए विशेषज्ञ क्या उपाय सुझाते हैं जानेंगे। इसके बाद बताऊंगा कि एक राज्यसभा सीट क्यों चर्चा में है जो आज से 3 साल पहले भी थी, और KGMU के डॉक्टरों को एक नया वायरस मिला है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद बताएंगे कि कैसे इंस्टेंट लोन दिलाने वाले ऐप्स से हो रही है ठगी और कैसे इससे बचा जाए। आखिर में जानेंगे कि BCCI की सालाना बैठक में आज क्या बातें हुई। फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आए हैं प्रतीक वाघमारे।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रोटोकॉल के तहत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस इवेंट में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हालांकि TMC ने कहा है कि उन्हें न्योता नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पिछले 2 सालों से निष्क्रिय विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई है। केंद्रीय गृह न्याय सचिव और विधि आयोग को पक्षकार बनाती इस याचिका में महीने भर के अंदर आयोग बनाने और इसे वैधानिक निकाय बनाने की भी मांग की गई है। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने दौरा रद्द कर दिया। किसानों की मांग है कि DCM दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए। भारत में पिछले 24 घंटों में 24,712 नए संक्रमित मरीज आए हैं, जबकि 312 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। वहीं बीते दिन 29,791 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सेलिब्रिटी की डिजिटल और सोशल मीडिया प्रेजेंस को ट्रैक करने वाली ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी चेक ब्रांड के अनुसार अगस्त से अक्टूबर की तिमाही में प्रियंका की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 265 करोड़ रुपए रही है। रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स की कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकेंड्स में लोन देने का वादा करती है, उसके बाद बकाए की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है। वोडाफोन पर करीब 22,000 करोड़ के टैक्स मामले में आए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के आदेश को भारत सरकार ने सिंगापुर की अदालत में चुनौती दी है। मध्यस्थता अदालत ने भारत के खिलाफ फैसला देते हुए वोडाफोन पर भारत की 22,100 करोड़ की टैक्स मांग को अवैध बताया था। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम्स बोर्ड यानी CBIC ने GST के नियमों में कुछ बदलाव कर प्रावधान किया है कि अब 50 लाख रुपए से ज्यादा मासिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST का कम से कम 1% हिस्सा नकद देना अनिवार्य होगा।
तो शाम का खबरनामा दिनभर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है अमन गुप्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। सरकार ने आज एक और चिट्ठी लिखी है, इसमें किसानों से बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की गई है। साथ में ये भी लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। इससे पहले कल किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है और नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा है कि किसानों के मामले में दखल दें। कांग्रेस नेताओं ने 2 करोड़ किसानों के साइन किए हुए एक ज्ञापन को भी राष्ट्रपति को सौंपा। वहीं धारा 144 लागू होने के बावजूद किसानों के समर्थन में मार्च निकालने की वजह से प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही आज किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ MSP का विवाद नहीं है, कानूनों की भी बात है। कानून लागू होने से खेती का पूरा सिस्टम बदल जाएगा और किसानों को नुकसान होगा। तो इस नुकसान का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पहला कानून, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, किसानों का कहना है कि फसलों के दामों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। इसे लेकर किसानों की चिंता क्या है, इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल से बात की।
देखिए, किसान इन तीनों कानूनों को लेकर बड़े चिंता में है। उनको फिक्र है कि अगर उनसे एमएसपी छिन जाती है तो उनका क्या भविष्य होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर किसान, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, अभी फिलहाल एमएसपी की एक किस्म से कह लीजिए सहायता पर ही निर्भर है। अगर एमएसपी उनसे वापिस ले लिया जाता है तो खेती का खर्चा इतना ज्यादा आता है कि उसमें से प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो खासकर एक कानून की अगर बात करें हम लोग, तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 का जो है, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर किसान फसलों के दाम उनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं ताकि उसको आगे बेचा जा सके। लेकिन किसान नेता और किसान ये पूछ रहे हैं कि जब एमएसपी सिर्फ एक दो महीने के लिए उपलब्ध रहती है तो वो फसल को स्टोर, ये जमा करके स्टोर करके क्या करेंगे, क्योंकि एमएसपी अगर नहीं है तो उसको तो मनमर्जी के दामों पे खरीदा जाएगा। नंबर दो, किसान ये भी पूछ रहे हैं कि आप हमें स्टोरेज की बात कह रहे हो, हमसे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम स्टोरेज की फैसिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे। तीसरी बड़ी बात ये हो रही है कि इन तीनों कानूनों में जो हमारी कीमतें हैं वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है, उतार चढ़ाव आता, प्राइसेस एकदम क्रैश कर जाते हैं। आप उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, पिछले महीने हरियाणा में आलू जो है 3700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था और आज की तारीख में 700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। पिछले एक महीने के भीतर कितनी गिरावट हो गई। किसान के पास सिर्फ इस आलू को या तो वो कौड़ियों के भाव बेच दे या सड़कों पे गिरा दे, ये इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं, क्योंकि उनका जो खर्च है वो भी उनको नहीं मिल रहा। तो ये कानून इस ग्लट की समस्या को और जो कीमत युक्तों के उतार चढ़ाव की समस्या, इसको एड्रेस करने में नाकाम रहे, उसमें इस तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। हालांकि केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को एग्रीकल्चरल ट्रेड से जुड़े हुए कानून बताई है।
तो मंजीत, किसान मानते हैं कि इससे कॉरपोरेट का दबाव हो जाएगा। हालांकि सरकार तो स्टोरेज के लिए एक नई व्यवस्था जिसका नाम संपदा दिया है वो भी शुरुआत करने जा रही है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। खैर, सहकारी मंडियां उनका सिस्टम चलता रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कुछ कृषि विशेषज्ञों से भी आपने बात की है, क्या सुझाव दिए हैं उन्होंने?
देखिए, कृषि विशेषज्ञों से हमने बात की और ज्यादातर कृषि विशेषज्ञों का यही मानना है कि जो हमारा परंपरागत एपीएमसी सिस्टम है, एपीएमसी रिजीम है, क्योंकि उसको स्थापित करने में वर्षों लगे हैं और वो सक्सेसफुल चल रहा है, सफलतापूर्वक उसको चलाया जा रहा है और किसानों की इसमें विश्वास भी है, तो उसको बजाय खत्म करने के, बजाय डिसमेंटल करने के, उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है, पारदर्शी बनाने की जरूरत है। दूसरा बड़ा सुझाव जो कृषि वैज्ञानिक या माहिर दे रहे हैं वो ये कि हमने यूरोप में देखा है, हमने अमेरिका में भी देखा है कि कॉरपोरेट सेक्टर को जब भी कृषि में लाया गया तो वो फेल हो गया, क्योंकि कॉरपोरेट्स कृषकों के हित में काम नहीं करते, वो अपना फायदा देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर की बजाय हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को अपनाएं। हमारे अपने देश में दो बड़े एग्जाम्पल, अमूल दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमूल एक कोऑपरेटिव है, पंजाब में खुद वेरका का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो खुद डेनमार्क में जो 90% जो फार्मर प्रोड्यूस है उसको कोऑपरेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं और किसानों को उससे बड़ा फायदा हुआ है, किसानों का उसमें भला हुआ है, उनकी आमदन भी बढ़ी है। तो यही सुझाव है कृषि विशेषज्ञों का कि ये तीनों कानून अगर कथित तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर के संबंध में है या उनको करने वाले हैं तो इन कानूनों का रुख जो है वो कोऑपरेटिव्स की तरफ मोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों की आमदन भी सुधरे और वो स्थिर रहे।
ये थे पंजाब बेस्ड आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल। आजकल एक राज्यसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है और ये वही सीट है जो आज से 3 साल पहले भी सुर्खियों में थी। 2017 का साल था, अहमद पटेल इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे, कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वो सीट मिली थी। अब पटेल के निधन के बाद सीट खाली हो गई है तो एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस दो दो हाथ करने में लगे हैं। वैसे एक और सीट खाली हुई है, यह है अजय भारद्वाज की, उनका भी निधन हो गया है। तो दोनों सीटों के सियासी समीकरण का हाल मैंने पूछा गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से।
देखिए, आंकड़ों का गणित जो है वो अब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर दोनों सीट को कैजुअल सीट की तरह ट्रीट करता है और अगर दोनों के चुनाव के नोटिफिकेशन अलग अलग आते हैं, चाहे वो एक ही तारीख को दोनों चुनाव हो लेकिन नोटिफिकेशन अलग अलग आते हैं और दोनों चुनाव अलग होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोनों सीट जीत जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में अमित भाई शाह जो अहमद भाई पटेल के साथ राज्यसभा में काफी कसमकस के साथ चुनाव जीते थे, वो और स्मृति ईरानी, उन्होंने लोकसभा में गांधीनगर और अमेठी दोनों जगह से अमित भाई और वहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीते थे और दोनों ने लोकसभा के चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोनों का नोटिफिकेशन अलग किया और उसको कैजुअल वैकेंसी बताया और उसको कैजुअल वैकेंसी बताने की वजह से दोनों सीटों के चुनाव अलग अलग हुए एज कैजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैजुअल इलेक्शंस, और उसकी वजह से दोनों सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपको याद होगा तो एस जयशंकर वाला जो केस है, उस वक्त एस जयशंकर जो थे वो गुजरात से चुनाव जीत के गए थे और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं या कैजुअल इलेक्शन के लिए एक ही चुनाव होना जरूरी है। सो वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2009 की जो प्रेसिडेंट अगर देखी जाए तो 2009 में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्यपाल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो मैटर थी जिसमें इलेक्शन कमीशन पार्टी थी, उस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और कहा था कि जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कैजुअल सीट जो है उसके लिए दोनों कैंडिडेट का इलेक्शन एक साथ करे। अगर वो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है तो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सूचित किया है कि दोनों सीट को कैजुअल सीट से डिसाइड की जाए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर दोनों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को अंकगणित का कोई फायदा होता हुआ दिखता नहीं है।
अच्छा अजय जी, इलेक्शन कमीशन अगर दो अलग अलग नोटिफिकेशन नहीं निकालता है दोनों सीटों के लिए, तो क्या कांग्रेस के पास इतने नंबर्स हैं कि वो एक सीट निकाल सके?
अगर अलग अलग नोटिफिकेशन नहीं निकालती और एक ही नोटिफिकेशन में चुनाव होता है तो फिर कसमकस होगी, क्योंकि अभी बीजेपी की स्ट्रेंथ 111 है और कांग्रेस के पास 69 है। उस केस में डेफिनेटली वापस बीजेपी को कांग्रेस के कुछ विधायक तोड़ने पड़ेंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था मिस्टर अभय भारद्वाज के चुनाव के वक्त और नरहरी अमीन को चुनाव जिताने के वक्त। ये करीब 4 महीने पुरानी ही बात है, तो वापस कांग्रेस से या तो तोड़ने पड़ेंगे या फिर कांग्रेस को अपना हाउस ऑर्डर में रखेंगे, तो कांग्रेस एक सीट ले जा सकता है आराम से।
ये थे गुजरात में वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं, और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
और एक नए वायरस का खुलासा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टरों ने किया है। शोध में उन्होंने एक वायरस पाया है जिसका नाम दिया गया है परवो 4। इसी वायरस का एक रूप है जो कुत्तों और बिल्लियों में भी पाया जाता है, इससे उनकी मौत तक हो जाती है। अब जो परवो 4 वायरस डॉक्टरों को मिला है वो सांस संबंधी बीमारी जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, उसके कुछ मरीजों में मिला है। मैंने ये शोध करने वाले डॉक्टर शांतनु प्रकाश से बात की और पूछा कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है, कब ये पहली बार इंसानों में मिला था।
सर, ये अभी एक डिबेट का विषय है, इस पे हम काफी काम कर रहे हैं। हालांकि ये मिला था 2005 में, बहुत लोगों ने इस पे काम किया नहीं। छोटा सा वायरस है, 5000 बेस पेयर का, और मिला था शुरुआती में HIV और कुछ ब्लड डोनर्स लोगों में। उसके बाद इसकी अभी क्या बीमारी करता है ये पुष्टि अभी बहुत अच्छे से की नहीं गई। हमारी लैब में एक बार जब मैं PhD कर रहा था, स्टूडेंट था 2013 में, हम लोग हेपेटाइटिस पे काम कर रहे थे, तो उसी दौरान मुझे ये बी के कर रहा था, कुछ डेटा खराब आ रहा था, तो हमने देखा तो वो पार्वो 4 निकला और पहली बार मुझे ये गलती से मिला था। एक तरह से मेरे लिए डिस्कवरी 2013 में हुई थी, को बहुत लोग इसका नाम जानते नहीं थे। तो फिर मैंने इस पे काम करा काफी, हमने देखा कुछ पब्लिकेशंस भी करें कि ये कहाँ मिलता है, कैसे ट्रांसमिशन है, तो अभी काफी काम हम कर भी रहे हैं। हाइवर अभी हम ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि इसकी वजह से दिमागी बुखार था या नहीं। फिर हमने इसको कोशिश किया सांस की बीमारी में देखने के लिए, तो एक हमने लास्ट ईयर पेपर पब्लिश किया था जिसमें जो पेशेंट सीरियस बीमारी से एडमिट होते हैं, सारी जिसमें इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियस वायरस और जो दूसरे दूसरे काफी वायरसेस होते हैं, उन सब पेशेंट्स में जब हमने जांचा तो ये लगभग 26% लोगों में ये पाया गया जो काफी सीवर बीमारी से ग्रसित थे एक तरीके से। तो उसमें भी ये अभी प्रूवन नहीं है कि इसी की वजह से वो बीमारी थी या नहीं। फिर हमने देखा कि जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो जिसमें लोग ज्यादा सिम्टम नहीं आता, नॉर्मल सी सर्दी होती है, उसमें कितने में मिलता है, तो उसमें भी लगभग 12 से 16% लोगों में ये मिला।
अच्छा शांतनु, अभी सांस की बीमारी से पीड़ितों में ये मिला है और कोरोना भी सांस लेने में तकलीफ करता है, तो क्या ये उतना डेडली है और कैसे इसका संक्रमण होता है?
नहीं सर, वो हम यूजुअली जो डीएनए, अमन जी, जो डीएनए वायरसेस जो भी सारे हैं वो इतना ज्यादा ट्रांसमिशन ऐसे रेस्पिरेशन से हुआ नहीं है सर। अभी कोई भी देखेंगे तो एक दो बोका है जो इसी के ग्रुप के है जो ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी में एस्टैब्लिश्ड है। बाकी अगर पार्वो 4 की बात करें तो ये सांस के रास्ते में मिलता है, ये तो सांस के रास्ते में मिलता है तो उम्मीद है कि सांस से ट्रांसमिट भी होता होगा, क्योंकि हमने जो इन्फ्लुएंजा के सैंपल्स थे पहले कोरोना के दौरान, तो अभी इस पे नहीं किया है, कुछ कर रहे हैं हम लोग, अभी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जिसका अभी रिजल्ट नहीं है। ट्रांसमिशन तो है लेकिन कोरोना की तरह हो जाए ऐसा उम्मीद तो नहीं लग रहा है। बाकी ये सर शोध का विषय।
ये थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शांतनु प्रकाश। और हाँ, मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा स्कूल में, लेकिन अब एक नई किताब आई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई, स्टीफन फ्रेडरिक डेल ने ये लिखी है। इस किताब में बाबर से जुड़े तमाम ऐसे तथ्यों के बारे में बताया गया है जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं थे। तो इस किताब के लेखक से यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुक्तदर खान ने बात की है। उनसे हमारे साथी नितिन ठाकुर ने बात की है और इस पॉडकास्ट के बहाने बाबर के तमाम पहलुओं को उघाड़ने की कोशिश की है। आपको ज़रूर सुनना चाहिए ये पॉडकास्ट, इसमें बहुत सारी बाबर के बारे में आपको दिलचस्प जानकारी मिलेगी। तो ये पॉडकास्ट आपको अगर खोजना है तो आप हमारे वेब पेज पर आइए। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। यहाँ आप जाएंगे तो आपको पॉडकास्ट का सेक्शन मिलेगा, उसमें ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।
स्टेंट लोन दिलाने वाले कई ऐप्स के बारे में आपने सुना होगा। ये ऐप आपको एक छोटी रकम थोड़ी बहुत जानकारी लेकर मुहैया करा देते हैं। अब इन्हीं ऐप्स के जरिए कर्ज के लेन देन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां ठग ऐप के जरिए लोगों को परेशान करते थे और उनका डेटा चुरा कर गलत इस्तेमाल करते थे। इस तरह के ऐप से कई कंपनियां कम ब्याज दर में सेकंडों में लोन देने का वादा करती हैं और उसके बाद बकाया वसूलने के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। अब तक इस चंगुल में फंसकर 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, कैसे इसका पर्दाफाश हुआ और किस तरह इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, यही जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे वेब में असिस्टेंट एडिटर मानस तिवारी से, जिन्होंने इस खबर को ट्रैक किया है। सबसे पहले मानस से मैंने यही पूछा कि इस घोटाले का मोडस ऑपरेंडी क्या है, यानी कैसे काम करता है ये घोटाले का पूरा ऑपरेशन।
देखिए, यहाँ पर जो मोडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल साफ है कि जो लोग ऐसे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनका इस कोरोना के टाइम पर किसी भी वजह से उनकी नौकरी गई है या उनकी सैलरी कट हुई है और जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो जाती है, आपको हो सकता है अपने EMI देने हो, आपको अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी हो, और जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं अब वो सडनली बैंक से NBFCs के पास नहीं जा सकते। तो कई सारी इस तरह की एप्स आ गई हैं जो लोगों को कॉल कर ये कह रही हैं कि हम आपको इंस्टेंट लोन देंगे, यानी आप अभी हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लोन यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे और आपको उसको एक आपको टाइम देते हैं कि 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आप ये लोन जो है हमें वापस कर सकते हैं। अब आपने एक बार जब लोन ले लिया उसके बाद ही आप क्या करते हैं कि आपसे कई सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कुछ फोटोज ले लेंगी और आपसे कुछ परमिशन मांगती हैं आपके फोन के अंदर, जिसके थ्रू उनको एक्सेस मिल जाता है आपकी फोन बुक का, आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल हिस्ट्री का। और जब आपने एक बार वो पैसा ले लिया और किसी कारण से आप उसे लौटाने में थोड़ी देरी करते हैं या आप अगर टाइम से लौटा भी देते हैं, तो उनके जो कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको कॉल करके बार बार परेशान करते हैं। काफी सारे लोगों ने सीसी कंप्लेन करी कि हरास किया जा रहा है, उन्हें अब्यूजेस दिए जा रहे हैं, इनफेक्ट गंदी भाषा में बात की जा रही है। और क्योंकि उन लोगों के पास आपकी कॉल हिस्ट्री, आपके मैसेजेस का एक्सेस है, वो आपको ये भी धमकी दे रहे हैं कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके ऑफिस के कलीग्स को भी कॉल करके उनको भी धमकियां देंगे। तो यहाँ पर जो ये जो स्कैम है, ये पूरी तरह से क्लियर है कि लोगों को जो परेशान है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है।
तो मानस, ये मामला तो काफी पेचीदा है, लेकिन जानना यह चाहता हूं कि किस तरह पकड़ में आया ये, और आरबीआई की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद ऐप के जरिए कर्ज का लेन देन, इसको कितना खतरनाक मानते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और क्यों है? क्योंकि ये जितने भी ऐप्स हैं, करीब 30 के करीब ऐप्स को इस बार पुलिस ने यहाँ पर लिस्ट कराया, उनमें से कोई भी ऐप आरबीआई से अप्रूव नहीं है। तो ये सारी वो ऐप्स है जिनको आरबीआई ने कभी अप्रूव ही नहीं करा। अब सामने कैसे आया? देखिए, पहले भी आ चुका है, कई सारे लोगों ने पहले भी कंप्लेंट्स करी हैं। जब ये कोरोना वाला टाइम शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों की नौकरियां गई, उस समय से बहुत सारे केसेस आए थे। हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि हैदराबाद पुलिस ने वहां पर 3 सुसाइड के केसेस सामने आए। ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने इस चीज से परेशान होकर, इतना ज्यादा उन्हें हरास किया गया, इतना ज्यादा उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर ली, जिसके बाद पुलिस ने काफी सारे इलाकों में रेड करी और उन्हें पता चला कि हैदराबाद, गुड़गांव और एक आध दूसरे शहरों में भी इस तरह के कॉल सेंटर्स खोले गए हैं जहां से लोगों को कॉल करके परेशान किया जा रहा है। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ जो ऐप्स हैं उनके ओनर्स भी सेम हैं। तो मान लीजिए आपने एक ऐप से लोन लिया और कल को अगर आप उसे लौटा नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो दूसरी ऐप का बंदा आपको कॉल करके बोलेगा कि आप हमसे लोन लेकर उस ऐप को अपना पैसा चुका सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि दोनों ही ऐप्स का जो ओनर है वो सेम ही होगा। तो इस तरह का पेचीदा यहाँ पे मामला चल रहा है, काफी सारे लेयर्स हैं फ्रॉड के जिसके थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
अच्छा मानस, एक और चीज आखिर में समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस धोखाधड़ी से सुरक्षित रहा जा सकता है।
जी बिल्कुल, उससे पहले मैं एक और यहाँ पे चीज हाईलाइट कर दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पैसों को लेकर आपको यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपका जो डेटा है वो भी सामने वाले जो भी ऐप्स रन कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाता है, जो कि एक बड़ा थ्रेट है आपके पैसों से। अगर आपका एक बार फोन बुक का एक्सेस मिल गया, आपके मैसेज मिल गया, उसको वो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए आप यूज करते रहे, अपने कैमरा की परमिशन दे दी, आपको पता नहीं क्रिमिनल माइंड किस तरह से काम करते हैं, हो सकता है आपके कैमरा, आपके फोन का कैमरा यूज करें, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उसे आपके अगेंस्ट यूज करें। और इनको रोकने का तरीका बहुत सिंपल है, जब भी आप कोई ऐप पहले तो डाउनलोड करें तो मेक श्योर करिए कि यार जो आरबीआई से अप्रूव्ड या आरबीआई से सैंक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहीं से लोन लीजिए। आप ऐसे ही जाके किसी भी रैंडम प्लेटफॉर्म से लोन मत लीजिए। अगर कोई ऐप आप डाउनलोड करते भी हैं और वो आपसे परमिशन मांगती है अलग अलग तरह की, आप उसे डिनाई कर दीजिए। और अगर उसके बाद भी वो आपको लोन देने से मना कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप ऐसी ऐप को मत यूज कीजिए। और इसके अलावा दूसरा ये है कि मान लीजिए आप, चलिए किसी कारणवश आपने लोन ले लिया और आप फंस गए और आपको इस तरह के कॉल आने लगे जहां आपको धमकियां दी जा रही है, तो तुरंत आप जाके एक FIR रजिस्टर कराइए। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब इस तरह की धमकियां मिलती हैं पैनिक कर जाते हैं और वो पैसे दे देते हैं। तो आप ये मत कीजिए, आप जाइए पुलिस स्टेशन में, अपने पास जाइए, वहां FIR दर्ज कराइए, थोड़ा संयम से काम लीजिए।
ये थे इंडिया टुडे वेब में असिस्टेंट एडिटर मानस तिवारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की आज अहमदाबाद में 89वीं सालाना बैठक थी। बैठक शुरू होने से पहले BCCI के जनरल मैनेजर VP राव को अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया। बैठक के एजेंडे में IPL से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुद्दे शामिल थे। तो BCCI की इस सालाना बैठक में किन किन बातों पर विचार विमर्श हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। और सबसे पहले यही पूछा कि मीटिंग में किन बातों पर मुहर लगी।
देखिए, इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ये कि अब IPL में 8 की बजाय 10 टीमें होंगी, लेकिन 2021 के संस्करण से नहीं, ये फैसला जो है लागू होगा 2022 के संस्करण से। तो काफी चर्चाएं थी पहले भी कि टीमों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अब जाकर के फाइनली BCCI की मुहर लग गई है और अब 2022 से 8 की बजाय 10 टीमें आपको खेलते हुए दिखाई देंगी IPL के अंदर। एक और बड़ा फैसला लिया है BCCI ने कि NCA जो इस वक्त बेंगलुरु में है, और देश का एकमात्र एमसीए है वो, उनकी संख्या बढ़ा करके अब 5 करने का फैसला किया है बीसीसीआई ने, ताकि एकमात्र जो एनसीए बेंगलुरु में है उसके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो और खिलाड़ी जो कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं वहां ट्रेन करने के लिए, तो ऐसे बात है कि उनको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वक्त लगता है ट्रैवलिंग में, तो उनकी सुविधा खिलाड़ियों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में 5 एनसीए स्थापित किए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला है बीसीसीआई का। इसके साथ ही राजीव शुक्ला को अब बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, उनको महिम वर्मा की जगह पर यह पद मिला है। महिम वर्मा का टेन्योर खत्म हो गया था इसी साल की शुरुआत में। इसके अलावा जो ओलंपिक 2028 में आयोजित होने वाला है लॉस एंजलिस में, उसको लेकर के एक अहम फैसला है। आईसीसी की ये बात थी कि T20 को ओलंपिक का हिस्सा बनाया जाए, भारतीय बोर्ड ने इस पर एक सैद्धांतिक मंजूरी जरूर दे दी है, एक तरह से राजी जरूर हुई है भारतीय बोर्ड, लेकिन अभी इस पर और ज्यादा स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक और अहम फैसला ये किया गया है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं कोविड के कारण काफी जो है मैचेस अगर नहीं हो पाते हैं या नहीं हुए हैं तो उनको कंपनसेट करने की भी बात बीसीसीआई ने कही है, यानी कि मैचेस अगर मैचेस नहीं खेल पाती है कोई टीम या घरेलू खिलाड़ियों को मैचेस नहीं मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी फीस कट जाएगी या उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको भी कंपनसेट करने का एक प्रावधान रखा है इस कोरोना काल में बीसीसीआई ने। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फैसला ये है बीसीसीआई का।
अच्छा इकबाल, आईपीएल के फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगले साल यानी 2021 में इस टूर्नामेंट में 10 टीमें होंगी, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि ये व्यवस्था 2022 से लागू होगी, तो ये बोर्ड की तरफ से देरी क्यों?
देखिए इंटरनेशनल कैलेंडर जो होता है वो काफी पहले ही बन जाता है और जाहिर सी बात है कि हर टूर्नामेंट जो कि हर T20 लीग दुनिया भर में आयोजित होती है उसके लिए एक विंडो खासतौर पर तैयार किया जाता है। स्पेशली आईपीएल जैसा एक बड़ा इवेंट जहां पर बीसीसीआई का बड़ा स्टेक भी रहता है और बीसीसीआई का दबदबा भी है आईपीएल आईसीसी में, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए एक विंडो रखवाती है। लेकिन क्योंकि अब 10 टीमें होंगी तो मैचेस की संख्या भी बढ़ जाएगी, अब 94 मैचेस होंगे कुल जब 10 टीमें हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए वक्त भी लंबा चाहिए, आपको 2.5 महीने का वक्त चाहिए, तो आपका विंडो तो छोटा है अगले साल के लिए, ऐसे में 94 मैचेस या 2.5 महीने आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ये एक अकोमोडेशन जो है एक बड़ी समस्या हो सकती है बीसीसीआई के लिए। इसीलिए कोई रश करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत भागने की जरूरत नहीं है, अभी तमाम चीजों को फिक्स करके तमाम चीजों को सॉर्ट करके अगले साल से यानी कि 2022 से जरूर इसको इत्मीनान से आयोजित किया जा सकता है।
ये थे आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल। तो आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप जुड़ना चाहें तो आज तक रेडियो डालकर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।